घट घट रावण राज। एक काले साए को देखकर घबराकर संजय ने अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से वहां से निकाला और तुरंत अपने घर की ओर लेकर चला गया। हड़बड़ाहट में संजय ने गाड़ी को बीच सड़क पर ही खड़ा कर अपने घर के अंदर भाग गया। हड़बड़ाहट में घर का ताला भी नहीं खुल रहा था। उसके माथे पर पसीना था और कमीज पर खून के निशान, जिसे देखकर वह और जल्दी करने लगा। ताला खुलते ही वह अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर फटाफट अपने कमरे में चला गया। संजय अपनी कमीज निकालकर तुरंत एक बैग में रखकर उस बैग को पलंग के नीचे फेंक देता है। कपड़े बदलकर सोने के लिए अपने पलंग पर जाता है, लेकिन बार बार वही सब सोचकर उसको नींद कहां आती है। सुबह सुबह जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन संजय की आंख खुलती है और वह उद्विग्नता पूर्वक अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सड़क से एक आवाज आती है, वहां खिड़की के पास खड़े हैं संजय भाई, उनको कह दो कि अपनी गाड़ी बीच सड़क से हटाएं और बात को यहीं खत्म करें। लेकिन सक्षम कहां मानने वाला था, वह मजा लेने के मकसद से कहता है, इनकी गाड़ी की वजह से मुझे बहुत देर हो गई है, आज तो जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, और अब तो मैं नगर निगम की गाड़ी को बुलवा कर इनकी गाड़ी को यहां से हटवा लूंगा। संजय को अचानक से याद आता है कि वह रात को अपनी गाड़ी बीच सड़क पर ही खड़े करके आ गया था। संजय भागकर सड़क पर जाता है और सबसे माफी मांगता है, फिर अपनी गाड़ी को पार्किंग की जगह पर खड़ी कर देता है। संजय जैसे ही सोचता है कि अब सब कुछ छुपा लिया है और चैन भरी सांस लेता है, तभी वह सक्षम को किसी से कहते हुए सुनता है, पास ही के गांधी पार्क में एक लड़की की लाश मिली है और वहां पर बीती रात एक चाट वाले ने किसी को भागते हुए देखा था। चाट वाले का तो एक भी कहना था कि उसने उस शख्स को एक स्विफ्ट की गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा। कहीं वह स्विफ्ट संजय भाई की तो नहीं? यह सुनने के बाद संजय को लगने लगा कि अब वह नहीं बच सकता और अपनी इस विक्षिप्ति की वजह से उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसको बस एक ही बात समझ आ रही थी कि वह कैसे वहां से भाग जाए। वह तुरंत अपनी एक टिकट बुक करता है और नासिक में अपने मम्मी पापा के पास जाने के लिए पैकिंग शुरू कर देता है। वहां अपने बेटे के मृत शरीर के पास अजय के बेचारे माता पिता बहुत रो रहे थे। पुलिस भी संदिग्ध मामले में पूरी जांच करने को तत्पर थी। घटनास्थल को पूरी तरह से छानबीन करने के बाद और अजय के माता पिता से जरूरी जानकारी लेने के बाद सबसे पहले वह अजय के ऑफिस में जाती है, जहां पुलिस को मैनेजर से यह पता चलता है कि बीती रात अजय और पलक के बीच में किसी बात पर लड़ाई हुई थी। उसके बाद पलक ने अजय पर जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया था और वहां से भाग गई थी। अजय भी उसके पीछे पीछे गया था और अजय को रोकने के लिए उसका दोस्त संजय भी उसके पीछे चला गया था और तीनों में से कोई वापस ऑफिस नहीं आया। यह सुनने के बाद दरोगा जी पलक के घर का पता लेकर वहां पहुंचते हैं। पलक पुलिस को देखते ही हैरान हो जाती है और वह पुलिस से पूछती है, आप लोग यहां पर क्यों आए हैं? मैंने अभी तक अजय के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए आदर्शवाणी।